नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे निवस्ते चरणाभिः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुषी। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना सुदेव्याय राधे तं न मां चरणं कुरु। भागवतम दशम स्कंद 38 अध्याय। सांग्रात्रि मधुपुर ज्ञान महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रेयौ नंदगोकुलम्। हमने बतलाया जो कंस ने कृष्ण और बलदेव जी को ब्रज से लाने के लिए निर्देश दिया। एक दिन पहले एकादशी के दिन उन्होंने अक्रूर को आदेश दिया कि जाओ, वो उनका अमात्य भी था, मंत्री भी था। अक्रूर वॉज द मिनिस्टर ऑफ कंस, बट ही न्यू दैट ही इज ऑल्सो भक्त ऑफ कृष्ण, जानता था। तो अक्रूर को उन्होंने जिस दिन आदेश दिया कि ब्रज में जाओ, उस दिन एकादशी थी। उन्होंने सोचा कि आज एकादशी है, आज कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा, आज मैं भगवत चिंतन करूंगा। इसलिए एकादशी के दिन कुछ विचार करने लगे। भक्त लोग ये विचार करते हैं, मैं कुछ करने में असमर्थ हूं, यदि भगवान की इच्छा होगी तो कंस ने तो हमें आदेश दिया है जाने के लिए, किंतु यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी तो किसी भक्तों को हमारे पास में भेजने मत जाओ, या कोई अंतः प्रेरणा हम में आएगी। इसलिए एकादशी के दिन आज हम हरिनाम कीर्तन करें, भगवत कथा चिंतन करें और एकादशी का विधिवत पालन करें, और यदि कुछ बदला नहीं, कोई बात ऐसी नहीं हुई तो कल मैं जाऊंगा। इसलिए उस दिन जान बुझ करके नहीं गए। ही थॉट दैट टुडे इज एकादशी, कंस हैज ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, बट टुडे आई विल नॉट गो एनी वेयर, आई विल ऑब्जर्व एकादशी बाय चैंटिंग नेम, बाय हियरिंग हरि कथा, बाय रिमेम्बरिंग कृष्ण। एंड इफ कृष्ण वांट्स देन ही विल सेंड एनीवन, ही विल टेल मी डोंट गो, or anything will come in my heart by the mercy of Krishna, and then I will change this view not to go. Otherwise, I must go there. So thinking this, he took, he did not went to Braja. वो ऐसा सोच करके नहीं गए. और उसी दिन प्रातः काल में दुष्ट कंस ने केसी को वृंदावन में भेजा मारने के लिए कृष्ण को. केसी बड़ा भारी दुर्धर्ष असुर था. वो अपनी माया से किसी के रूप को धारण कर सकता था, मायावी घोड़ा बन सकता था, मनुष्य बन सकता था, कोई भी चीज बन सकता था. ये सब असुर लोग इस विद्या में निपुण होते थे. ऑल दी असुर डेमन्स यूज्ड टू बी वेरी योगी. दे कैन टेक इजिली एनी शेप और डिसअपीयर. दे कैन बी donkey or horse or anything. He was so powerful that he Kans called him and told, "Oh brother, I want that you should help me. You should go to Braja and try to kill Krishna and Baldev. I think that you will do. You will follow my order." ऐसा कर करके कंस को, कंस ने उसको भेजा. कंस, उसने किसी ने कहा कि कृष्ण का स्वरूप जरा बतलाओ, हमको पता नहीं. उसने कृष्ण सांवला नाम का, सांवला एक लड़का है, उम्र होगी 10 वर्ष की, बड़ा ही देखने में बड़ा खूबसूरत है और ऊपर में सिर पर मोर मुकुट धारण करता है, हाथों में या अधरों पर मुरली रहती है, पीताम्बर कपड़ा पहनता है पीला. उसके साथ में सब सखा लोग हो गए और गायों को चराता होगा, तुम ऐसा देख करके उसे मार डाल. ऐसा उसने आदेश दिया. इधर में एकादशी के दिन ही दूसरे दिन और केसी ब्रजभूमि में वहां गया और वहां पर देखा एक श्यामले लड़के को जो हाथ में बांसुरी लिए हुए मुख पर मैं बजा रहा है और सिर पर मोर मुकुट है और पीले वस्त्र हैं. किंतु ये कृष्ण नहीं थे, ये थे मधुमंगल. मधुमंगल ने कहा, सखा तुमको ब्रजवासी लोग प्यार करते हैं, खाने पीने के लिए लड्डू इत्यादि देते हैं, हमें कोई नहीं देते, तो ये तुम्हारा कोई गुण नहीं है, ये गुण बंसी का और मोर मुकुट का और पीले वस्त्रों का है. यदि तुम हमको ये दे दो और हमारा वस्त्र है तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, हम ही को लोग देंगे. जैसे अदल बदल हो जाए बस. उन्होंने अपने कपड़े लत्ते सब उनको दे दिया और मंगल ने कृष्ण का मोर मुकुट बंसी पीताम्बर लटिया इत्यादि धारण कर दिए. उसी समय में वो आया केसी, घोड़े का विराट घोड़े का रूप धारण कर, उनकी जुल्फे आकाशों से लगती थी, बड़ा विकराल भयंकर रूप, हिन हिन करता हुआ जब ब्रज में आया तो सब लोग स्त्रियों के गर्भपात हो गए, यहाँ तक कि पशुओं के, और गायें चारों तरफ में डकराने लगी और भगी चारों तरफ में. और उसने देखा कि ये कृष्ण है, उनको बस बड़ी जोर से दौड़ा और दौड़ करके दुलकती झाड़ी, वो तो बाई चांस इनको नहीं लगी, दुलकती की हवा से गिर पड़े और तब कहने लगे, किसे जरूरत नहीं है तुम्हारे कपड़ों और ये तो महाविपत्ति आई हमारे ऊपर, लड्डू तो गया और ये हुआ. आज से हम जरूरत हम नहीं समझते हैं तुम्हारे इन चीजों को लेने का, इसलिए कृष्ण को ये सब समर्पण करने जा रहा. उसी समय कृष्ण आचार्य ठहरो और केसी को जा करके बाल ठोकने लगे. केसी इन पर आक्रमण किया, केसी के मुख में उन्होंने अपना हाथ डाल दिया. घुसाते हैं ये वज्र और लोहे के समान और एकदम लाल गर्म जैसा, गले में अटक गया। प्राण वायु अटक गई, आंखें निकल आई और वो लीड इत्यादि करता हुआ, तृप्ति करता हुआ वहां पर एकदम सेंसलेस होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार से कृष्ण ने उसे मार डाला। ये प्रातःकाल की बात है। उसी समय शाम को व्यमासुर, अपराह्न में व्यमासुर को मारा। व्यमासुर की गुहा कहाँ है? काम्यवन, भोजन थाली के पास में, काम्यवन में, और वहां पर उन्होंने मारा। एक दिन में कितना चलते फिरते और कहाँ कहाँ रहते थे वो कृष्ण के लिए संभव है। आज से करीब करीब ये 5000 वर्ष की बात है। आज से हम लोगों का जन्म करीब करीब 70-75-76 वर्ष का हुआ है और उससे 60-70 वर्ष पहले हमने सुना है कि हम लोगों के दादा परदादा जो थे वो 50-60 माइल दूर गांव से कचहरी कोर्ट करने के लिए आरा जाते थे। ये आरा एक टाउन है, 60 माइल जाना 60 माइल आना। सनातन गोस्वामी को आप लोगों ने सुना है जब वृंदावन से 15 मील 16 मील गोवर्धन और 14 मील की परिक्रमा, फिर वहां से 14 माइल यहाँ आना और यहाँ से फिर 7 माइल जाना वृंदावन में। ये प्रतिदिन का उनका दैनिक साधारण सी बात है। उनके पैर बहुत लंबे लंबे होते, बहुत लंबे लंबे होते, इसलिए उन लोगों के लिए ये संभव बनता। हमने सुना है कि एक बार सुंदरबन में वहां के खेतिहरों ने देखा एक बहुत बड़ा लंबा आदमी चला जा रहा, इतने में ट्रेन को अपने कदमों से ऐसे लांघ करके दौड़ता हुआ चला गया। कहीं उसके यहाँ पर कुछ घाव था, पीछे से पता चला ये था कौन, द्रोण अश्वत्थामा था। उसकी कान की बाली गिर गई तो उसको 50 आदमी लोग मिल करके उठाने में लगे। कितने बड़े बड़े बलवान, कितने लंबे चौड़े उस समय के आदमी होते थे, इसलिए उन लोगों के लिए 10-20-50-60 माइल चलना फरना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। ये वहां पर वृंदावन में केसी को मारा सवेरे और शाम को मारा काम्यवन में जो मसूर को मारा, और केसी के मारने के बाद ही दोपहर में नारद जी से भेजी और नारद जी ने उनको बतलाया कि आपको ये भविष्य लीलाएं करनी है, इसलिए टीकाकार हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, कंस फाल्गुन कृष्ण एकादशम कृतैव मंत्रणा। कंस ने फाल्गुन की एकादशी में ये अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की और उसी दिन केसी को और अक्रूर को भेजा ब्रज में। केसी गया वहां ब्रज में वृंदावन और अक्रूर कहाँ मिले, नंदगांव, इसलिए मालूम है नंदगांव में रह करके सब जगह ही उस समय जाते थे वृंदावन। दूसरे दिन प्रातःकाल केसी बधे, केसी का वध किया और अक्रूर प्रस्थानम, अक्रूर ने प्रस्थान किया सवेरे नंदगांव के लिए और नारद स्तुति उसी दिन मारा गया वो केसी। अब मारने के बाद में इन्होंने स्तुति की नारद जी ने कृष्ण की, ये आपको ये सब भविष्य में कार्य करने हैं। और अपराह्न में व्योमासुर बधो अक्रूरस्य सायं ब्रज आविशत, और सायंकाल में ये अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। सो इट हैज बीन टोल्ड, सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती है टोल्ड दैट ऑन एकादशी इन द मंथ ऑफ फॉल्गुन. कंस एडवाइज विथ हिज एडवाइजरी बोर्ड एंड ही सेंट ही टोल्ड ऑर्डर अक्रू टू गो ब्रज एंड आल्सो ही ऑर्डर केसी टू गो एंड किल कृष्ण. सो नेक्स्ट डे अक्रूर वेंट टू इन द्वादशी टू नंदा गांव एंड केसी वेंट टू वृंदावन एंड कृष्ण वाज ग्रेजिंग काउज एंड कृष्ण किल्ड हिम एंड इन द आफ्टरनून कृष्ण किल्ड जमासु एंड इन द इवनिंग अक्रूर रेस्ट वृंदावन. नंदगांव में पहुंचे. जब वो जा रहे हैं गच्छन पथी कैसे गए अक्रूर जी कैसे गए. कंस ने इस बड़े काम को साधन करने के लिए अक्रूर को सब प्रकार की सुविधाएं दी. उसने अपना रथ सोने का बना हुआ रथ और अच्छे अच्छे से घोड़ों से जीते हुए चार घोड़ों से जीता हुआ वो रथ रथम अस्थाय रथ को दिया और अपने हाथों से उनको बैठाया और उनको बतलाया कि कैसे हमारा ये काम साधन करना. When Kansa sent Akrur to Braj, he had his own golden chariot with five classes of horses and he sent to Gokul. उसने बैठा करके उसमें भेजा गच्छन पथी महाभागो भगवत अनुभुजे क्षण भक्ति परा उपगत एवं एतत् अचिंतयत्. जब अक्रूर जी चले व्हेन अक्रूर बिगन टू गो टू ब्रज ही वाज सो भावुक. भावुक माने के बाद थिंकिंग वो सोच रहे हैं बड़े भावुक. भक्तों क्या सोच सकते हैं मेरे जैसा दुर्भागा व्यक्ति. आज भगवान की विशेष कोई कृपा है तो मैं जा रहा हूं उनका दर्शन करने के लिए. मैं तो जा नहीं पा रहा था डर के मारे ये कम समय दंड देगा जैसे कि और ब्रजवासियों के लिए या जादुओं के लिए आदेश कोई नहीं जाएगा और उसके डर के मारे सब जादव लोग भाग गए. किंतु आज हमें बुला करके ये खुद वहां पर भेज रहा है. मैंने तो कोई यज्ञ किया नहीं. मैंने कोई पुण्य की बात तो की नहीं. अरे कृष्ण का दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है और दुर्लभ बात है. टू हैव ए दर्शन ऑफ कृष्ण इट इज वेरी वेरी हाई थिंग एंड इट इज क्वाइट एक्ट दुर्लभ. मैंने क्या रेयर एंड नॉट डन एनीथिंग हैव डन नो एस्पेरिटी नो पुण्य कर्म नथिंग. ओहो मैंने कोई मंगल का अनुष्ठान नहीं किया है. अतः भगवान का जो साक्षात्कार भगवान से जो दर्शन होते हैं उसके निमित्त भक्तों की पूजा होनी चाहिए. मैंने भक्तों का संग नहीं किया मैंने पूजा नहीं की सेवा नहीं. बिना भगवत कृपा से या भक्तों की कृपा से किसी कार्य में भक्ति नहीं है और भगवान का दर्शन करना बड़ा बड़ी कठिन. किंतु भक्तों के साथ ही रहने से नहीं होगा इस बात को समझो. भगवत भक्तों के साथ तो उनके केस में वो क्या होते हैं जू होते हैं. जू तो रक्त पीते हैं उनका तो भक्तों की सेवा करते हैं. तो ऐसा ना हो गुरु के पास वैष्णव के पास में रह करके जू जैसा नहीं, कैसा रहे? अनुकूल रूप में सेवा की वृद्धि के साथ में रहे। इसलिए कर रहे हैं, मैंने पूज्य उपहारों के साथ में, पूजा उपहारों के साथ में मैंने भक्तों की कोई सेवा नहीं की है, फिर ये सुजोग कैसे आ गया भगवान का दर्शन? यहां तक कि जो शुभ कार्य है वो शुभ कार्य भी नहीं किए हैं, भगवत भक्ति की तो बात अलग रहे, मैंने तपस्या भी नहीं की। अथवा भक्तजनों को एमएस कुछ ऐसा कोई दान नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, उनको कुछ दिया नहीं, कंस के डर के मारे में विशेष करके उनसे मिल नहीं सकते। ददाति प्रतिग्रहणाति भोजन माखात पृछते भोंगते भोजते चैव सर्वदम प्रतिलक्षण। अपना प्रिय व्यक्ति किसको दे? वैष्णव को दे, भक्तों को प्रिय समझे। जो भक्तों को प्रिय नहीं समझ सकता उनको देगा क्यों? We should try to give our dearest thing to Vaishnava person. एक समय की बात है, कोई प्रिय व्यक्ति होता है उसी को कोई देते हैं, जिसका प्रिय कोई विषय व्यक्ति हो तो विषय को देगा, और जिनका प्रिय वैष्णव होंगे वो उनको देंगे। एक समय की बात है, महाराज भर्तृहरि जिनके छोटे भैया विक्रमा देखते हैं, बड़े भैया का नाम था भर्तृहरि, सद्गुण संपन्न सुशासक अभी युवक, देखने में बड़े सुंदर और सब गुणों से भरपूर थे। उन्हीं की राज्यसभा में कालिदास बराहमिहिर और वो क्या अमरकोश को बनाने वाले अमर सिंह और ऐसे ऐसे बारह या नौ रत्न थे, तो ऐसे ही उनकी गरिमा आप लोग समझ सकते हैं। एक समय में एक कोई जवाहरात का व्यापारी आया और 900,000 उस समय रुपए की कीमत का दुर्लभ हार उनको भेज दिया, अपने हाथों से उनके गले में दे दिया अपने व्यापार के चलाने के लिए। राजा देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जब घर गए अपने राज्यसभा से उठ करके अपने महल में गए, अभी नवविवाहिता पत्नी की बड़ी सुंदरी बड़ी सुशील सी लगती थी, अपने हाथों से उसके गले में पहना करके बड़े आनंदित हुए और देखने लगे किस लिए दिया। उन्होंने विचार किया कि यदि हमारे इस विश्व में कोई हमारा प्रिय है तो हमारी पत्नी ही हमारी प्रिय है, इसलिए उसको गले में उन्होंने डाल दिया और उसके गले में दे करके बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वो हमने अपना राज्य चला रहे हैं, ये यद्यपि इसका विवाह हुआ था राजा के साथ में किंतु इसकी प्रीति पहले से ही विवाह के पहले से ही उनके सेनापति से थी और उसे लुप्त छिप करके मिलने की चेष्टा करती थी, किंतु वो इसको अभी नहीं देता था, मैंने अधिक प्रीति नहीं करता और उसको वो प्रीति से वशीभूत करना चाहती थी, इसलिए एक दिन मौका पा करके उसने रात के समय में वो हार उसके गले में डाल दिया। ये प्रसन्न होगा चला गया वो और वो सोचने लगा कि यहाँ की जो बेटिया है बड़ी सुंदरी नवजुवती बड़ी सुंदर गायन करती है, उसको प्रसन्न करना है, इसलिए उसको रात में एक दिन जब उसके उससे मिला तो उसको गले में वो पहना करके बड़ा आनंदित हुआ। वो किंतु बेस्या राजा के प्रति आसक्त थी, एक दिन मौका पा करके वो राजा से मिली और राजा को इसने उपहार में दिया। राजा ने देखा जी इसे एक महीने के अंदर में यह हार वही हार है जिसको मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये कैसे यहाँ आ गया दिस्या के पास। उसने बड़े प्यार से बोला उनसे कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये बतलाओ ये सचमुच में ये हार तुम्हारे पास में कैसे आया, कहां से मिला। यदि बेस्या बतलाती है तो राजा बिगड़ जाएगा और उसे मार डालेगा। जो सेनापति हमारे आसपास आता है तो सेनापति को भी मार डालेंगे, इसलिए वो बतलाना नहीं चाहिए। उन्होंने तलवार निकाला था कि अभी तुम्हारा गला साफ कर देंगे, ठीक ठीक बतलाओ और जब सच सच बतलाएगी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो डर गई और डर करके सचमुच में उगल दिया ये आपके जो सेनापति हैं हमारे प्रति आसक्त हैं, वो हमको प्रसन्न करने के लिए ये हार दिया, किंतु मैं आप ही को सबसे अधिक, आप ही हमारे प्रिय हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तभी उन्होंने दे या ले लिया, इसलिए आपको ये हार सौंप रही है, ये ठीक है जाओ। दूसरे दिन उन्होंने सेनापति को तलब किया, सेनापति आए, इस हार को आप पहचानते हैं, देख करके वो गुम रह गए। उन्होंने तलवार खींच ली, अभी ठीक ठीक बतलाइए ये आपको कहां से आई, ये हार मिला आपने उस बेस्या को दिया कहां दिया, आपको मिला कहां से। तो डरने लगा, कहा ये अभी देखो अभी तुरंत। तो उसने कहा जी हाँ आपकी पत्नी ने हमको ये दिया है, आपकी पत्नी हमसे प्रीति करना चाहती है इसलिए हमको प्रसन्न करने के लिए दिया और हमने उसको दिया, ठीक जाए। अब उसको सुनेंगे रात में उनको नींद नहीं आई, मैंने प्रीति किया अपनी पत्नी को सबसे अधिक, उस पर विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर हमारे प्रीति को ठुकरा करके सेनापति से प्यार किया और सेनापति ने उसे ठुकरा करके उस बेस्या को प्यार किया और उसने उसके प्यार को ठुकरा करके हमें प्यार किया, यही जगत है। मैं किस लिए ये सब कर रहा, किस लिए कर रहा हूं, धिक्कार है मुझे इस संसार में, किसको लेकर के मैं बात करूंगा, धिक्कार है हमें, हमें न राज्य चाहिए, राज्य लेकर के हमें क्या देगा यदि संसार में प्रीति नहीं है, तो क्यों नहीं उस प्रभु से प्रीति करूं जो जगत का सृजन करने वाले हैं, हमारा भी सबका वो इष्ट देव, इसलिए उन्हीं से ही प्रयास करना कर सकते हैं, सबको छोड़ करके लाश को मार कर अपने भाई के सिर पर मुकुट पहना दिया, सवेरे बुलाया भोर में रात में ही और उन्हें कुछ उपदेश दिए और दे करके रात ही में वो सबको छोड़ छाड़ करके नंगे धड़ंगे केवल एक लंगोटी पहन करके ये भर्तृहरि जी हैं, उनका श्रृंगार शतक और बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत विद्वान आदमी थे। तो यदि कोई भगवान के प्रति के बदले संकल्प करके आज गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो उनकी यही दुर्दशा होती है, यदि किंतु भगवान प्रसन्न हो तब तो उनको वैराग्य होगा और नहीं तो भगवान का भजन करने के लिए घर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके भी फिर उन्हीं का चिंतन करेंगे, गुरु वैष्णव का सिंह तो यही कह रहे हैं, हमने ऐसा कोई कर्म किया नहीं, वैष्णव की तो हमने सेवा की नहीं, कोई तपस्या भी आराधना भी नहीं की, शुभ कर्म भी नहीं की और तभी हमें ये सुयोग मिल गया। न तो हमने कुछ दान भी किया, वैष्णव को दान करना चाहिए वो दान भी नहीं किया। एक बात हमको भी लगती है और सबको भी लगनी चाहिए, गरीब गरीब लोग, गरीब से गरीब बच्चे भी अपना जथा सर्वस्व कमाई का कुछ भाग वैष्णवों को देता है, यही इससे हमारा कल्याण होगा ना? बड़ी मुश्किल से कमाई का परिश्रम करके पसीने से खून को पसीना करके और उस कमाई का फल हमको देता है, या आप ये गुरु वैष्णव की सेवा करें, और उसका यदि हम मिसप्रयोग करें, दुरुपयोग करें, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी बतलाओ तो? भगवान जानेंगे कि नहीं, गुरु जानेगा कि नहीं? अभी कहना नहीं चाहिए हमको, फिर भी कह रहे हैं, ब्रह्मचारियों के लिए हम यहाँ पर सारी व्यवस्था है, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ, कपड़े से लग करके सब कुछ, और कहीं उनको यदि प्रणामी हम लोगों के साथी में जाते हैं और मिल जाती है तो वो पैसा चुपके से दुबका लेते हैं। अच्छा, इसका क्या होगा, क्या होगा? मटके तो कोई हर्ज नहीं होगी, किंतु होगा उनका क्या, क्या होगा, ये विचार करो। कठिन समस्या आती है, मठ ही सब सेवा कर, उनको क्या करना चाहिए, कहां ले आकर के गुरु सेवा करनी चाहिए, तो उसके बदले रख लेते हैं, किंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। उपदेश मैं दे रहा हूं, हम लोगों का ऐसा था जहां भिक्षा मिली 7 रुपए 12 आना, अब 4 आने कहां से मिला करके गुरु जी को दें, 8 रुपया देना है।